और यही हमारा इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज का गोल है कि एक ऑथेंटिक और तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के साथ चूंकि डील करते हैं तो लोएस्ट रेट्स गारंटी होती है, क्योंकि हमारी लॉयलिटी सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ है। इंश्योरेंस कंपनी सब के सब रेट में खोल के सामने रख देता हूं, हर चीज टोटली ओपनली डिस्क्लोज्ड है, बस यही सर हम करते हैं। थैंक यू फॉर टाइम।
इसके साथ साथ मेरा फेवरेट टॉपिक जो होता है हमेशा वो इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या आपके पास?
बेहतरीन सर, मैं एक आपको इसे मैं कहता हूं फॉरवर्ड थिंकिंग प्लान। फॉरवर्ड थिंकिंग प्लान इस तरह के, हम कहते हैं जी पता नहीं मिलियनियर बनना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं हम अपने बच्चों को तमाम के तमाम को गारंटी के साथ मिलियनियर बना सकते हैं। ये सिर्फ सुनने वाले ध्यान से अगर सुन लें दो मिनट में सर, $200 माहवार, बच्चों के अक्सर पैसे आते हैं, $200 माहवार अगर आप 20 साल तक बच्चे के कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं आपको लिख के कॉन्ट्रैक्ट देता हूं कि एट एज 60 अगर वो रिटायरमेंट पे चाहें तो उनको जो है 7,20,000 जो है वो कैश मिलता है, और अगर डेथ होती है तो ओवर मिलियन है, और अगर जल्दी पैसे भी निकलवाने हैं तो एज 26 पे $90,000 है। तो जो लोग RESPs और इस किस्म की चीजें देखते हैं, अगर वो अपने छोटे बच्चों के यही $200 इसमें डालना शुरू कर दें तो टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगी माजिद भाई 48,000 इन 20 इयर्स। 26 की एज पे 96,000 ले लीजिए, 30 की एज पे अगर घर का डाउन पेमेंट करना है तो 1,25,000 ले लीजिए, अगर आप मानिए एज 65 पे लमसम ले रहे हैं तो $7,20,000 है, और अगर आप चाहें कि ये रिटायरमेंट में यूज हो तो 48,000 अ मंथ फ्रॉम एज 60 से लेके एज 80 तक इस बच्चे को मिलेगा, और फैमिली के लिए 750,000 इसके अलावा है। इस सारे बेनिफिट्स को आप किसी तरह भी एडअप करें तो ये $1,000,000 का बेनिफिट बनता है, कॉस्ट सिर्फ $48,000 है। पर्पज और पते की बात इसमें ये है कि टाइमली एंड प्रॉपरली डिजाइंड प्लान अगर ले लिया जाए तो वो जैसे माजिद भाई एक वो बैंक है उनका कहना है कि यू आर रिचर देन तो ये अब आप बंदा कहे कि जी $200 से क्या हो सकता है, मैंने अभी एग्जांपल दी, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मैं लिख के दूंगा $200 माहवार बच्चों का करें। और मैं ये कहूंगा ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर अपने पोते पोतियों नवासे इनके लिए या अपने जो यंग कपल्स भी हैं अपने बच्चों के RESP की बजाय एक दफा बैठें, पता करें कि और कौन सी ऑप्शंस हैं। $200 माहवार अक्सर औकात मिडिल और लो इनकम फैमिलीज के बच्चों का आ रहे होते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन है
नहीं उससे ज्यादा आ रहे होते हैं सर।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसमें से सिर्फ $200 निकाल लीजिए। एक मैं सोर्स बता रहा हूं, या बहुत से अदर सोर्सेज हैं। अभी देखें सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो इस पेंडेमिक के बाद वर्क स्टाइल ही बदल गया, अब लोग गैसेस पे वो पैसा कम्यूटिंग पे नहीं खर्च रहे, तो रास्ते बड़े हैं। और मैंने जैसे अर्ज किया आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट,
इट इज
आई मीन 48,000 में अगर हम एक अपने बच्चे को ये गारंटी दे रहे हैं तो सुनने वाले ये सोचें कि अगर हम वर्किंग पीपल हैं तो क्या हमें किसी ने $1,000,000 की गारंटी दे रखी है कि जब आप रिटायर होंगे तो हियर इज योर $1,000,000, यू कैन डू इट, पीपल हु आर लिसनिंग दे कैन डू इट फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। शर्त इतनी सी है कि पता कर लीजिए, और पता करने की कोई फीस नहीं है, आए बैठे चेक कीजिए, यू विल हैव सो मेनी ऑप्शंस। व्हाई? बिकॉज ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है यही पिछले 28 साल से कर रहे हैं। और
साहब आप सिर्फ सोचिए नहीं, आप इस पे एक्शन लीजिए। एंड मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से कहता हूं कि अपने बच्चों का जो पैसा आ रहा है आपका, आप थोड़ा जमा होते ही पाकिस्तान पे का टिकट ना ले लें उससे, बल्कि आप ऐसा करें कि ये इसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट। आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप फजल वदूद साहब से कॉन्टैक्ट कीजिए, इनसे बात कीजिए, इनके साथ बैठिए बात कीजिए, और वही पैसा जो गवर्नमेंट आपके बच्चों के लिए दे रही है, और आजकल तो बहुत आता है भाई, मैं तो कहता हूँ लोग अपने मॉर्गेजेस पे कर रहे हैं।
बिल्कुल कर रहे हैं,
हाँ
बिल्कुल
कर। तो पैसा बहुत आ रहा है आजकल, एंड विच इज यू डिजर्व इट, यू डिजर्व, एवरी बच्चा एंड एवरी पेरेंट डिजर्व दैट मनी। और जब गवर्नमेंट दे रही है तो वो आपको बेमानी नहीं कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, मगर उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन,
दैट इज द की। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसकी यूटिलिटी अगर प्रॉपर हो तो उसका बहुत बेनिफिट है।
यू गॉट इट राइट सर। फजल वदूद साहब इन शो प्रो से ताल्लुक रखते हैं, 28 साल का इनका एक्सपीरियंस है। 9056075000 इनका फोन नंबर है, 9056075000 इनका फोन नंबर है, एंड इनको कॉल करें, इनसे मुलाकात करें, इनके साथ बैठें। एंड ये तो एक प्लान, क्योंकि वक्त की कमी होती है हमारे पास, सिर्फ एक प्लान बताया है, ऐसे और बहुत प्लान्स हैं। आप $100 डालने हैं, आप $300 डालने हैं उसमें, किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं। आप बच्चों की शादियों में जो है $20,000 जो है ग्रैंड पेरेंट्स दे देते हैं, साहब ये लीजिए साहब, आप वो जाके उन्होंने हनीमून पे गए और जाके स्पेंड कर दिया सारा, वो जो है वो पैसा जो है ग्रैंड पेरेंट्स जो है बचपन में किसी बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसको उनके पेरेंट्स को जी $10,000 या $15,000 दे दिया खुशी में, यू नो दे वो आप इन्वेस्ट करें वहां पर, उसके साथ साथ और जो है $100-$150 आप इन्वेस्ट करें। बट इन द एंड एट द एज ऑफ 60 या उससे पहले आपके पास इतना पैसा होगा कितना आराम से रिटायर हो सकते हैं। फजल वदूद साहब 9056075000 इनका फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू माजिद भाई जी, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम। फजल वदूद से मैंने आपकी बातचीत करवाई, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, उसके फौरी बाद फयाज बल्लाना से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Cricket World Cup semi-final and final live at 770 AM.
Coverage of knockout games with the cricket panelists and experts.
Pakistani Test cricketer Sikandar Bakht honge hamare saath.
Semi-final coverage Thursday, November 16th.
And final on Monday, November the 20th.
Tune in, Radio 770 AM and E-Awaaz TV.
6478724900. Listen and watch online www.eawaaz.com.
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक्ट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773, ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਾਈਲਡ ਰਾਈਡਸ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.99 APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤਮਾਮ ਹੀ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਜਾਂ forddealers.ca ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ।
लॉजी स्टेशन साइड हुन विकना शुरू हो गया है। मिल्टन डाउनटाउन विच तुहाडी वखरी रिहायश जेडी शुरू हुंदी है 487,990 डॉलर च ते GTA दा सब तो बढ़िया मुल है। दो टावर आली इमारत सेंट्रल पोडियम थानी अंदरूनी ते बाहरली सहूलतां पेश करदी है। मिल्टन गो स्टेशन दे बिल्कुल नाल जुड़े स्टेशन साइड मिल्टन फ्यूचर मोबिलिटी हब दा नींह पत्थर है जेड़ा तुहानू आराम नाल तुहाडियां मंजिलां तक पहुंचाएगा। GTA दे उज्जवले भविष्य विच अज निवेश करो। स्टेशन साइड .ca ते रजिस्टर करो।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ हॉलीडे सीजन मनाएं और 17 और 18 नवंबर को विंटर लाइट फेस्टिवल को जरूर देखें, जिसे फील्ड गेट डेवलपमेंट्स ने पेश किया है। एंजॉय अ वीकेंड ऑफ फ्री फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज जिसमें स्टेज परफॉर्मेंसेस, अम्यूजमेंट राइड्स, हॉलीडे मार्केट्स और एनुअल ट्री लाइटिंग सेरेमनी एंड ऑफ कोर्स से हेलो टू सेंटा हिमसेल्फ एट द ब्रैम्पटन सेंटा क्लॉज परेड। और हाँ, एक अनरैप्ड टॉय डोनेट करने पर फ्राइडे को एडमिशन बिल्कुल फ्री। विजिट brampton.ca/winterlights फॉर फुल लिस्ट ऑफ इवेंट्स।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दा दा भी चलाउने हो मैनुअल जा ऑटोमेटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लॉजी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL because we care.
जी साहब नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। 4:11:03 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जनाब फयाज बलाना साहब पाकिस्तान के हालात हाजरा पे आपसे तबसरा करेंगे। फयाज साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम नवाजिद भाई, आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज आप जिसका बता रहे हैं कि टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है और हमने मुख्तसर बात करनी है। पाकिस्तान की सियासी सूरतहाल की आप बात करते हैं तो चूंकि नवाजिद भाई पाकिस्तान में नहीं बल्कि जितनी क्रिकेट लविंग नेशंस हैं वहाँ क्रिकेट का बुखार जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है और इसलिए क्रिकेट की एग्जाम्पल देना, मिसाल देना ज़्यादा बेहतर है। हालांकि हमारा बुखार तो बाबर आजम की किसी नाकाम की कप्तानी की वजह से बहुत पहले ये बुखार हमारा पाकिस्तानी कौम का तो क्रिकेट का बुखार उतर चुका था। इसके बावजूद अगर एग्जाम्पल देनी हो तो हम बेस्ट एग्जाम्पल यही होगी कि जिस तरह हमारी क्रिकेट का कोई हाल नहीं है कि विदाउट एनी प्लानिंग हम इतने बड़े इवेंट में चले गए और हमें एहसास ही नहीं था कि हमारे मुकाबले पे जो कौमें थी, हमारे मुकाबले में जो लोग थे, उन्होंने कहाँ तक तैयारी की हुई थी। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें कि वो डाउन गए फिर उठे और ऐसे उठे कि सेमीफाइनल में पहुंच गए और अब उनका पूरा पूरा चांस है कि वो फाइनल में भी चले जाएंगे। इंडिया को देखें कि उनकी तैयारी ऐसी है कि अभी तक वो पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं आ रहे। बाकी आप किसी भी टीम को देखें, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जिस तरह क्रिकेट टीम में अप एंड डाउन आए हैं लेकिन लोग संभल के खड़े हुए हैं और दोबारा वो आगे बढ़े हैं। हम जिस तरह क्रिकेट में हम एक दफा डाउन गए हैं तो फिर हम उठ नहीं सके और हम अफगानिस्तान की जैसी एक बिल्कुल एक नोआमोज टीम है, नाजरबकार टीम है, उससे भी हार गए हैं। एग्जैक्टली हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल भी वही है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो ताज़ा तरीन वारदात हो रही है वो ये हो रही है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इक्तदार में लाया जाए। कोई बंदा कुछ नहीं देखता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता कल तक कौन थे, और गुज़श्ता कल तो बहुत दूर की बात है, हम पिछले 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 20 साल 25 35 साल की बात नहीं करते। हम सिर्फ इतना हमारी कौम को ये बावर कराना चाहते हैं कि 18 सितंबर 2023 को मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठे हुए जो तकरीर की थी वो 100% एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीर थी, एंटी रियासत तकरीर थी। एंटी एस्टेब्लिश मीन्स एंटी रियासत। 21 अक्टूबर 2023 को जब वो लाहौर में पहुंचे और मीनार पाकिस्तान में जो उन्होंने तकरीर की उससे, और जिस तरह उन्हें एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह उनके पास चल के इंसाफ पहुंचा और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नूर खान एयरबेस पे पहुंच के उनके फिंगरप्रिंट्स दिए गए और फिर उनकी जमानतें हुई और उनके सजाएं सारी मुअत्तल हुई, इस वक्त भी सजाएं उनकी माफ नहीं हुई, मुअत्तल की गई हैं, मुअत्तल करके उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। अब फॉर एग्जाम्पल वो जो कुछ कर रहे हैं अभी लाहौर गवर्नर हाउस में अगले रोज वो चले गए और वहां बैठ के उन्होंने एक इजलास की सदारत की। कोई बंदा देखने वाला नहीं, देखने वाले हैं लेकिन पाकिस्तान के जो मेन टेलीविजन चैनल्स हैं उस पर रिपोर्ट नहीं किया जाता। इसलिए रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि पूरे अंडर कंट्रोल है। किनके कंट्रोल में है? हमारी रियासत के कंट्रोल में है। और अगर डीप डाउन उनको भी देखा जाए तो हमारे जितने चैनल्स हैं इस वक्त वो बेसिकली कारोबारी लोगों के हाथ में है, और कारोबारी लोगों के हाथ में होने की वजह से, क्योंकि कारोबारी लोगों को کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے ریاست کے لیے, اور ریاست اس طرح کنٹرول کرتی ہے کہ کبھی ان کی ٹیکس سٹیٹمنٹس نکال کے بیٹھ جاتی ہے, کبھی ان کے ڈیوز جو ہوتے ہیں وہ نکال کے بیٹھ جاتی ہے, کبھی ان کے معاف کیے ہوئے لون نکال کے بیٹھ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں میر شکیل الرحمان جیو گروپ ہمارا سب سے بڑا چینل ہے, بڑا گروپ ہے جامع نیوز اور جیو, ان کے اس وقت بھی کراچی میں سب سے بڑے پراپرٹی ڈیلر میر شکیل الرحمان صاحب ہیں. اس کے علاوہ کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی, کون کون سے بلڈرز کے ساتھ ان کی انڈر ہینڈ ڈیلز ہیں, نو بڈی نوز. اسی طرح اے آر وائی ہائی رائز بلڈنگز میں ان کا جتنا عمل دخل ہے پاکستان میں ایوری ون نوز. اس کے بعد پھر علیم خان صاحب جو اس وقت تحریک استقام پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ چنیدہ اور خاص الخاص بھی ہیں. سمر ٹی وی انہوں نے خرید لیا ہے, سمر ٹی وی ان کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد دنیا ٹیلی ویژن بہت بڑا چینل ہے, اس میں وہ باقاعدہ طور پر میاں عامر صاحب جو پہلے میئر لاہور رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی رشتہ داری بھی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ براستہ, چودھری منیر صاحب, چودھری منیر جو سمدھی ہیں مریم نواز کے, ان کے ذریعے ان کی رشتہ داری بھی بنتی ہے میاں نواز شریف صاحب سے. میاں عامر صاحب جو ہے وہ باقاعدہ بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن کے بزنس میں انٹر ہو چکے ہیں. پھر ایک نیوز, ایک نیا ٹیلی ویژن چینل آ رہا ہے کچھ دنوں پہلے تک, پی این این نیوز کے ساتھ میں کے نام سے وہ لانچ کی ہوئی تھی انہوں نے اپنی نشریات, اب وہ ایک نیوز کے نام سے ایک باقاعدہ مین سٹریم میڈیا کے طور پر آ رہے ہیں. ملک اسد کھوکر صاحب جو سول سوسائٹی والے ہیں, ان کا ملک اسد کھوکر صاحب اس کے ہیں, اور کھوکر آپ کو پتا ہے لاہور میں کھوکر سارے میاں نواز شریف صاحب کے جتنے اخراجات ہیں وہ سارے وہی کھوکر برادرانی برداشت کرتے ہیں. پھر پبلک ٹی وی جو ہے لوگوں کو پتا ہے والرحمان بلڈرز والوں کا ہے, نیوز ون الکبیر والوں کا ہے, ایکسپریس کے بارے میں شنید ہے کہ ریاض ملک صاحب ہمارے ملک ریاض صاحب جو بیریا ٹاؤن والے ہیں انہوں نے بڑے شیئرز ایکسپریس کے خرید لیے ہیں. پھر سنو نیوز ان دنوں بہت دیکھا اور سنا اور جانچا جا رہا ہے, اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ بلو ورڈ سوسائٹی والے اسلام آباد میں بہت بڑی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, جنہوں نے ارتغرل اور ارتغرل ڈرامے والے جو لوگ تھے ان کو بھی کچھ فیورز دی تھیں اور پھر ان کے ساتھ کچھ ہاتھ بھی ہوا تھا, بلو ورڈ سوسائٹی والے آنر ہیں اس کے. اسی طرح اور بھی جہاں آپ دیکھیں ہمارا مین اسٹریم میڈیا سارا کاروباری لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور کاروباری لوگوں کو ان کا بازو مروڑنا بہت آسان ہوتا ہے. اسی لیے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح اس وقت ہماری ریاست کام کر رہی ہے اس سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو نہیں دکھایا جا رہا, لیکن سوشل میڈیا پہ دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نہیں روک سکتے, سوشل میڈیا پہ اسپیشلی یوٹیوب پہ ہزاروں کی تعداد میں یوٹیوب چینل اس وقت لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں, بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں کا واقعی کوئی ایکسپیرینس ہے میڈیا میں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو الف بے جرنلزم کی نہیں آتی, لیکن دے آر موسٹ اینڈ ویلکم ایز اے سٹی جرنلسٹ, کیونکہ سٹی جرنلزم ایک نئی اختراع ہے اور جسے زیادہ سے زیادہ پاپولر ہونا چاہیے, اور پاکستان میں لوگوں کو انکریج کیا جانا چاہیے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ہر بندہ اپنا کیمرا آن کرے اینڈ دے کین اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ, اور وہ رپورٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں تک اصلی خبریں پہنچ رہی ہیں. فار ایگزامپل ابھی میاں نواز شریف صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں جو جو حرکت فرما رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک تک جا رہی ہے. فار ایگزامپل گورنر ہاؤس لاہور میں انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی, اس کا مین اسٹریم میڈیا پہ تو رپورٹ نہیں کیا گیا, لیکن انہوں نے رپورٹ کہاں کیا, سوشل میڈیا پہ رپورٹ کیا, اور سوشل میڈیا پہ ہی بتایا گیا کہ میاں صاحب نے لاہور گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ کی صدارت کی ہے. اسی طرح کراچی میں گئے تو انہیں کس طرح پروٹوکول ملا, پھر کوئٹہ پہنچ گئے میاں صاحب. اب کوئٹہ میں جب پہنچے اور وہاں اترے تو تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 15 سے لے کر 30 سیاسی رہنماؤں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کیا ہے. اب ان میں شمولیت اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک پیپلز پارٹی میں تھے, پھر باپ میں گئے, اور پھر باپ سے نون لیگ میں اب تشریف آئے ہیں, کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید اس وقت ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے اور رواؤں کا رخ میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہے, اور میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے لگے ہیں, حالانکہ ان کی سزائیں معاف نہیں ہوئی, معطل ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے, بظاہر میاں صاحب جو ہے وہ قدم بہ قدم سیاسی سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی پا رہے ہیں, لیکن قدم بہ قدم وہ ان کی ساری وارداتیں پبلک پر یہاں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل اس وقت بلوچستان میں کوئی ڈونکی نہیں بچا, کوئی کرد نہیں بچا, کوئی دمڑ نہیں بچا, کوئی ہسنی نہیں بچا, کوئی کھوسا نہیں بچا, کوئی جمالی نہیں بچا, کوئی نشروانی نہیں بچا, کوئی بلیدی نہیں بچا, کوئی ڈومکی نہیں بچا, کوئی مری نہیں بچا, کوئی بڑے قبیلے کا بندہ نہیں بچا جس نے ابھی مسلم لیگ نون میں لاہور میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہو. کیا یہ ساری پاکستان کے عوام دیکھ نہیں رہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب ایک طرف تو یہ ڈرائنگ روم کی سیاست ہو رہی ہے, اور وہاں تماشا یہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے کوئٹہ میں, ایک عرصے بعد ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, تو وہاں کا جو میڈیا تھا اس کو وہاں قریب بھی نہیں پٹکنے دیا گیا, اور بلوچستان پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں عرفان سعید صاحب انہوں نے باقاعدہ اس پہ احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے شہر میں اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور ایک مستقبل کے وزیراعظم صاحب جو چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے لگے ہیں اگر وہ ہمارے شہر میں آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کی پارٹی میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم میڈیا کو کیوں دور رکھا گیا ہے, ہمیں کیوں نہیں وہاں بلایا گیا, میڈیا کو اس لیے نہیں بلایا گیا کیونکہ میڈیا وہاں جاتا تو میڈیا ان سے یہ پوچھتا کہ حضور آپ کا پلان کیا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک بلوچستان عوامی پارٹی کو گالیاں دیتے تھے اور آج بلوچستان عوامی پارٹی آدھی سے زیادہ پارٹی اپنے پاس انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا. فار ایگزامپل مریم نواز کا وہ کلپ وائرل ہو چکا ہے جس میں مریم نواز نے کہا تھا کہ بلوچستان میں اچانک ایک روز پتہ چلتا ہے کہ کوئی ماں یا باپ کے نام سے ایک سیاسی پارٹی بنتی ہے اور اگلے روز اس باپ کا ایک بیٹا وزیراعلی بلوچستان بن جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کی الیکٹڈ حکومت کو گرا دیا جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے آنے والے اقتدار کی خوشی میں اپنے ساتھ جو کل گزشتہ کال ان کے پیٹ میں چھرے گھونپے گئے تھے وہ سارے چھرے میاں نواز شریف صاحب بھول چکے ہیں. لیکن کیا پاکستان کے عوام بھی یہ سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہیں؟ قطن نہیں. ایک طرف یہ تیاری ہو رہی ہے, دوسری طرف پبلک کی ہر چیز نوٹ کر رہی ہے اور 8 فروری کو اگلے لکھے رسپانس 8 فروری کو شو کرے گی اور بتائے گی بلوچستان میں اختر مینگل ایک بہت بڑی ایک بلوچستان میں ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے. اختر مینگل صاحب کا 3 ہفتے پہلے کا انٹرویو سب کچھ یہاں کر دیتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت اور پاکستان کا سیاسی سفر کس طرف گامزان ہے. ایک اور بلوچستان میں ایک ہے قاسم سوری نام کا بندہ جو پی ٹی آئی کا وہاں پریزیڈنٹ صوبائی پریزیڈنٹ بھی رہا ہے, اس کے علاوہ وہ ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی میں. قاسم سوری صاحب ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہے. قاسم سوری صاحب کو آج باہر نکلنے کی اجازت دی جائے اور وہ اکیلا بندہ کوئٹہ میں اتنا بڑا جلسہ کر سکتا ہے جتنا یہ ساری 15 جماعتیں مل کے نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ وہ ایک جگہ کھڑا ہے اور ابھی تک کھڑا ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں جو کھڑے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی عمران خان جیل کے اندر بھی بیٹھ کے اتنا اتنے مطمئن اور پر اطمینان لگتا ہے جتنے میاں نواز شریف صاحب باہر. ان کے چہرے پہ پریشانی آپ کو صاف نظر آتی ہے. کیوں؟ کہ ان کے گزشتہ کل تک کے اتحادی بلاول بھٹو تک نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر باپ کل برا تھا تو آج کیسے اچھا ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب کو بلاول جو ان کے بچوں کی بچوں کی جگہ ہے اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حضور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن میں آئے. میں پیپلز پارٹی بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن میں آنے کے لیے تیار ہیں. کیا شہباز شریف اور نواز شریف بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں. کارکردگی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. لیکن یہ سارا تماشا پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. یہ تماشا کب تک چلتا ہے؟ کوشش تو ان کی ہے کہ 8 فروری تک یہ چیزیں اس طرح چلیں, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید لوگ یہ دسمبر اوور ہونے کی دیر ہے, جنوری میں لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے اور لوگ جنوری میں تنگ آ کے باہر نکلیں گے اور پھر سڑکوں پر دھما دھما مسئلہ اندر ہوگا جو اللہ نہ کرے خوفناک شکل اختیار کر لے. لیکن لوگوں کے اندر لاوا پک رہا ہے, لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں سیاسی کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ ہرگز ہرگز پاکستان کے عوام کو قبول نہیں. کیوں؟ کہ دوسری طرف سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں, سپریم کورٹ میں جتنی ہیئرنگ ہو رہی ہے ہر ہیئرنگ کے دوران یا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈسکلوز ہو رہی ہے یا ہماری یہ سیاسی قائدین جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. ابھی کل کی تازہ ترین واردات یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں ایک قرارداد پیش ہوئی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے اسمبلی میں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کے خلاف ایک فیصلہ سنایا. اس فیصلے کے خلاف سینٹ میں اگلے روز ایک قرارداد پیش ہوئی اور قرارداد پاس بھی ہو گئی. قرارداد پیش کرنے والوں کے نام ابھی تک کسی مین سٹریم میڈیا میں کسی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ نام دے دیں ان کے, لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس وقت صرف 12 سینیٹر اجلاس میں موجود تھے جب یہ قرارداد پاس ہوئی. لیکن اب گزشتہ کل سے وہاں ساری جتنی جماعتیں ہیں سب لوگ وویلا کر رہے ہیں کہ یہ قرارداد کیسے پاس ہو گئی. وویلا کرنے والوں میں کون لوگ ہیں؟ پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب جو سول لبرٹیز کے حوالے سے اور سول سپریمیسی کے حوالے سے چیمپئن بنتے ہیں, ان سے کوئی بندہ پوچھے رضا ربانی صاحب جب یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ ان کے ساتھ تاج حیدر صاحب ہیں پیپلز پارٹی والے, ان کے ساتھ پی ٹی آئی والے سیف اللہ صاحب ہیں, ان کے ساتھ جماعت اسلامی والے سینیٹر مشتاق ہیں, ان کے ساتھ اور ایک پوری ایک لمبی لسٹ ہے جس میں طاہر بزنجو ہیں بی این پی کے, اے این پی کے لوگ ہیں, کوئی سیاسی جماعت, حتیٰ کہ سب سے پہلے آواز احتجاج بلند کی سعدیہ عباسی نے جو شاید خاقان عباسی کی سسٹر ہیں اور مسلم لیگ نون کی سینیٹر ہیں. اگر مسلم لیگ نون, اگر پیپلز پارٹی, اگر پی ٹی آئی, اگر جماعت اسلامی, اگر عوامی نیشنل پارٹی, اگر سب کو وہ قرارداد منظور نہیں تھی تو پھر کس کالے چور نے وہ قرارداد پیش کی اور کن کالے چوروں نے اس قرارداد کو پاس کیا اور پھر آپ لوگ اس سینٹ میں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ سارا تماشا ہماری عوام دیکھ رہی ہے. جی ماجد بھائی
بہت بہت شکریہ, وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے یہیں پر اس کو ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی.
تھینک یو.
دو اسپانسرز کے پیغامات, ہم چلیں گے نیوز کی جانب.
قرضے से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर 10530।
जी सामने नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 4:26 और 20 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। और चलिए साहब, एक नए खिताब के साथ, खिताब भी बड़ा जबरदस्त खिताब दिया है हमने उनको, एक नए खिताब के साथ क्रिकेट की क्या है वो, जोगी नहीं, जोगी गुरु। अभी तक जितनी भी इन्होंने प्रेडिक्शन की वो सब सही निकली। तो क्रिकेट की जो गुरु हैं शाजिया मलिक जी, उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, नवाजिश करम मेहरबानी। अगर आप मानी के यानी कि इसका मतलब है आप लैन पे आ गए हैं माजिद भाई।
मैं लैन
पे, लैन पे आ गए,
बहुत दिनों से लैन पे आया हूँ,
लैन पे आए हैं। हाँ, यानी जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे बैठ के बड़ी दफा लोगों को जो प्रेडिक्शंस बैंक ऑफ कनाडा 6 महीने के बाद करता है, जो आप लोग जो हैं कोई अब कर रहे हैं, आज सुबह तक भी लोगों को एतबार नहीं था कि इंडिया जीतेगा, वो मैंने सारी प्रेडिक्शंस 15 दिन पहले की हुई थी। तो इसीलिए मैंने इन सबको कहा नादानो, अरे नादानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन है जी?
गुरुजी।
हाँ गुरुजी, ठीक है, बिल्कुल, तब आप समझ गए, माजिद भाई बिल्कुल लैन पे आ गए हैं, इसलिए अब मेरी माजिद भाई के साथ कोई लड़ाई नहीं। अच्छा जी, हम फॉरन खबरें शुरू करते हैं, क्योंकि आज खबरें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ दिल दुखाने वाली तो होंगी, लेकिन जाहिर है कि बड़े अंदर की स्टोरियां जो आपको जाहिर है कि और कोई भी नहीं सुनाता सवाए हमारे, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। बट दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय इकरास, शरिया कंप्लायंस सर्विसेज लेकर आते हैं, और सर्विसेज इनकी देखने के लिए इकरास.com पे जाएं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, आपको पता ही है, बड़े एंथुजियास्टिक हैं क्रिकेट के लिए, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आरिफा मुजफ्फर जी, अगर घर आपको बेचना है और सेल करना है, खरीदना है तो मुश्किल नहीं है, हैं? आपको सिर्फ बेचना है और सेल करना है, तो आरिफा मुजफ्फर जी को आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज ट्रूडो साहब जो हैं, उनकी जो कुछ स्टेटमेंट्स आई थी उसके ऊपर अब इसराइल जो है वो बड़ा भड़क गया है जी, है जी? उन्होंने, क्योंकि जब ये अल शिफा हॉस्पिटल पे खास
तौर पर रह गया था,
हाँ, जो नहीं भड़का था वो भी आज भड़क गया। अच्छा जी, वो जिस वक्त ये अल शिफा हॉस्पिटल पे इसराइल ने किए हैं ना बम्बार्डमेंट, और बच्चे बहुत सारे जो है उनकी डेथ्स हुई हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसराइल को ये जो बच्चे और बेबीज और औरतें हैं इनको जो गाजा में मारा जा रहा है इसको रोकना पड़ेगा। बीसी के अंदर बात कर रहे थे और वो कहते हैं जी जो कुछ हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे, और जो कुछ हम टेस्टिमोनियल्स डॉक्टर्स की सुन रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि, उससे हमें पता चल रहा है कि ये बड़ी तकलीफ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हमास की वजह से कलेक्टिव पनिशमेंट जो दी जाए। अच्छा, नतन्याहू साहब जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब बड़ा भड़क गए हैं, वो कहते हैं जी हम हार्म्स वे में सिविलियंस को नहीं डाल रहे हैं, हमास जो है सिविलियंस को हार्म्स वे में डाल रहा है। भाईजान, हमास ने तो अलेजली 1400 आपके बंदे मारे थे, आप 11000 बंदे मार चुके हैं, हैं जी, तो हार्म्स वे में सिविलियंस को किसने रखा हुआ है? भाईजान जरा होश के नाखन लो नतन्याहू साहब, तुसी भी मरना है एक दिन, मरना याद कर लो। तो बहरहाल जी ये इन्होंने कहा। अच्छा, अब ये हुआ है कि वैंकूवर के अंदर एक चाइना टाउन के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर ट्रूडो साहब जो हैं वो यही जो ये झगड़े चल रहे हैं पैलेस्टाइन और इसराइल के, तो उस सिलसिले में लोग जो है जमा हो गए जब ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए वहां पे गए और उन्होंने बड़े नारे शारे लगाए। बहरहाल जी फौरन कोई 100 के करीब फिर लोगों को जो ऑफिसर्स थे पुलिस ऑफिसर उनको भगाया गया ताकि इनकी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब की जा सके। और ये वाकया जो है लास्ट नाइट हुआ था और लोगों ने कहा कि भाई सीज फायर के लिए आप क्यों नहीं कह रहे हो ट्रूडो साहब को। तो ये आज बड़े जो है शोर हंगामा जो है वहां पे हुआ है। लेजर का जो पोल आया जी उसमें लोगों से पूछा गया है कि आप ट्रूडो साहब को नेगेटिवली देखते हैं, अच्छा प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, उनकी जगह पे किसको देखते हैं, क्या चीजें चाहते हैं। तो ये इसमें जो लोग हैं उन्होंने अपने 1612 लोगों का जो ओपिनियन लिया गया था उस पर उन्होंने बात की। 30% ने कहा कि जी वो सेटिस्फाइड हैं ट्रूडो की गवर्नमेंट के साथ, 63% ने कहा दे आर नॉट। पियर पॉलिवर को उन्होंने जो 27% लोगों ने कहा कि हम इसको बेस्ट प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, ट्रूडो साहब के लिए 17% ने कहा। इसके अलावा जो पॉजिटिव इंप्रेशन पॉलिवर साहब का है वो 35% लोगों के बीच में है, 33% जो है वो ट्रूडो साहब के लिए पॉजिटिव इंप्रेशन रखते हैं, 61% नेगेटिव इंप्रेशन रखते हैं ट्रूडो साहब के लिए, 45% पॉलिवर साहब के लिए नेगेटिव इंप्रेशन रखते हैं और 43% जगमीत सिंह के लिए पॉजिटिव और 41% नेगेटिव उनके लिए रखते हैं। और इसी तरह जो है यही जो हैं लोग तकरीबन मोर और लेस उन्होंने कहा जी कि कनाडा जिस तरह चाइना और इंडिया के साथ डील कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। और 1 in 4 लिबरल वोटर्स जो है उन्होंने कहा कि ट्रूडो साहब को अब क्विट कर देना चाहिए, 28% ने कहा कि नहीं उनको रहना चाहिए, 68% ने कहा जी कि कोई भी लीडर आएगा तो उससे कोई फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ऑन्टेरियो के अंदर जो पेशेंट ऑम्बड्समैन है क्रेग थॉम्सन जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑफेंसेस सॉरी ये जो कंप्लेंट्स हैं जो मुझे आ रही हैं 33% इंक्रीज कर गई हैं। ऑन्टेरियो पेशेंट ओम्बड्समन ने आज ये अपनी जो एनुअल रिपोर्ट निकाली है इसमें उन्होंने कहा जी कि हमने 4,388 कंप्लेंट्स रिसीव की थी 2022-23 ईयर के अंदर, जिसमें कि 3,235 जो थी वो हमारे कॉल सेंटर्स पे आई थी और बाकी हमें रिटन कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें कि पता चल रहा है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। 2.2 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं विदाउट प्राइमरी हेल्थ केयर और ये इशू जो है ये बड़ा ट्रबलिंग है और ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर हैं। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज है जी और इसके मुताबिक जो फ्रेंच लॉयर्स हैं फॉर सीरियन विक्टिम्स उन्होंने आज एक वारंट इशू किया है सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बशार अल असद, उनके भाई माहर असद और 2 उनके मिलिट्री जनरल्स घसान अब्बास बसाम अल हसन और कमांडर ऑफ 4th आर्मर्ड डिवीजन के लिए, और उनके बारे में कहा है कि ये जो थे दे वर इन्वॉल्व इन वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन यूजिंग इन 2023 केमिकल वेपन्स ऑन रेबल्स हेल्ड डमास्कस सबर्ब्स जो के है ईस्टर गुथा और डूमा के एरिया के अंदर। जियान सेल्जर एंड क्लेमेंस विच ये जो लॉयर्स हैं एट पेरिस बार उन्होंने कहा कि ये बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट जीत है क्योंकि इसके अंदर हम ये जो ग्रेव नेचर के ह्यूमन राइट्स इन्होंने क्राइम्स किए हैं उसके लिए इनको जो है पकड़ा जाना चाहिए। पेरिस का जो प्रोसिक्यूशन ऑफिस है उसने इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं दिया है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम होल्ड की थी हमने अंडर द यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन बाय फ्रेंच जजेस ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिट फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उसके बाद हमें पता चला है कि इन्होंने केमिकल वेपन्स यूज किए। तो पायान फिर ये जड़े व्हाइट फॉस्फोरस अलेजली यूज कर रहे हैं इसराइल उसके खिलाफ भी कोई बयान दो तुम देता ही नहीं है जे वो सारी तस्वीरें देखो जरा किस तरह इसराइल की जुल्म कर रहे हैं तो उसते उते भी करो। बहरहाल जी आज इन्होंने कहा अरेस्ट वारंट हमने जारी किया बशार अल असद के लिए। प्रेसिडेंट शी साहब जो हैं जी चाइना के वो पहुंचे हुए हैं अब यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पे अब होने वाली है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपिक की समिट जिसके अंदर 21 मेंबर्स हैं। और ये 2017 में शी साहब ने यूएसए का विजिट किया था जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे और अब ये आ रहे हैं। आपको पता ही है कि बाइडेन साहब के साथ कोई इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बाइडेन साहब ने रिपोर्टर्स के को बताया व्हाइट हाउस में सैन फ्रांसिस्को जाने से पहले कि हम चाइना के साथ कोई रिकपल नहीं करना चाह रहे बल्कि हम अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाह रहे हैं ताकि हम कभी भी फोन उठा के एक दूसरे के साथ इमीडिएटली बात कर सकें, अगर कोई प्रॉब्लम हो हमारी मिलिटरीज बात कर सकें। शी साहब जो हैं उनको जब वो पहुंचे यूएसए में तो उनको यूएस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन एंड यूएस एम्बेसडर टू चाइना निकोलस बर्न्स, उन्होंने टर्मेक पे इनका इस्तकबाल किया और अब इनकी, वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिल तो ये रहे हैं लेकिन कुछ ब्रेक थ्रू जो है उसका इम्कान नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक तकरीबन 500 जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं यूएसए के अंदर, जिसके के अंदर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, बहुत सारे, वो कह रहे हैं कि 40 यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने एक लेटर बाइडन साहब को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है कि इमीडिएटली इसराइल के ऊपर जो आप सपोर्ट डाले हुए हैं उसको फौरन आप वापस लें और सीज फायर की तरफ जो है यहां पर जाएं, क्योंकि यहां पर 11,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को मारा जा चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये जो स्टोरी है वो कहते हैं जी कि इंतहाई जो बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंटरनली भी बहुत ज्यादा डायसेंट चल रहा है इनकी इसराइल पॉलिसी के ऊपर, ना सिर्फ ये लेटर भेजा गया है जिसमें के शामिल हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी, बल्कि 3 इंटरनल मेमोज जो हैं वो भी भेजे गए हैं। इसके अंदर जो ना सिर्फ FBI के बल्कि जस्टिस डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम नहीं जाहिर किए, क्योंकि वो कहते हैं जाहिर है जी कि फिर इनकी नौकरी जो होती है उसके ऊपर बात आ जाती है तो वो नहीं हम कर सकते। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका जो है उसने फौरन सीज फायर के लिए कहा है और अपने पूरे जो टाइज हैं वो कट कर लिए हैं इसराइल के साथ। कतर जो है उसने भी कहा है कि ये जो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कर रहा है इसराइल, इसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। तो अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी जो है प्रेशर आता जा रहा है कि सीज फायर की तरफ जाए। पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है जी बहुत ज्यादा बांग्लादेश के अंदर देखा जा रहा है। हसीना जो वाजिद उनकी वहां पे जो है, सॉरी शेख हसीना वाजिद, हाँ जी, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहा जा रहा है कि आप फौरन क्विट करें और जनवरी में इलेक्शंस जो आने वाले हैं उससे पहले एक केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं हो सकते। हसीना की जो अवामी पार्टी है वो 2009 से पावर में है और कहा जा रहा है कि जो पिछले दो जनरल इलेक्शंस हुए थे 2014 एंड 2018 में, उसमें ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था क्योंकि बहुत ज्यादा मैस रिगिंग की गई थी। हसीना जो है शी इज द लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट, और उनके बारे में कहा जाता है बड़ा ब्रूटली वो सप्रेस करती हैं ऑपोजिशन को। 15 साल के अपने जो ये इनका रूल था उसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, करेंसी के ऊपर बड़ा बुरा असर है, यहां तक बुरा असर है इकोनॉमी पे कि IMF से हसीना साहिबा ने $4.7 billion का लोन लिया था अर्लियर दिस ईयर, और बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है वो भी कहता है इकोनॉमी इज हिटिंग रॉक बॉटम, और जो जुलाई सेप्टेंबर का जो क्वार्टर था उसके अंदर पेमेंट्स जो थी उनका डेफिसिट, बैलेंस टू पेमेंट्स डेफिसिट, इट रोज टू 2.8 billion, करंट अकाउंट डेफिसिट रोज टू 3.93 billion, फॉरेन करेंसी रिजर्व इनके फेल किए हैं बाय 20.66 billion, लास्ट मंथ की इनकी जो अर्निंग्स थी थ्रू एक्सपोर्ट्स वो जो है गिरी हैं बाय 13.64% टू 3.76 billion। इसके अलावा जो वो कहते हैं जी कि 26 मंथ्स का सबसे लोएस्ट रेट है, रेमिटेंसेस भी इसके साथ साथ नीचे आई हैं 4.4% इन फोर्थ क्वार्टर, और इकोनॉमी जो है उसने लूज किए हैं तकरीबन 65 billion टाकाज, जो कि बनते हैं 588 million US dollars पर डे से वो लूज किया है उन्होंने। तो वो कहते हैं जी कि बहुत बुरे जो है असर हैं तो इनको अब यहां से जाना चाहिए। अच्छा जनाब, ये जो है बहुत सारी चेंजेस जो हैं दुनिया के अंदर जो आ रही हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस ये भी हैं कि जो इलाका है ये सारा बांग्लादेश और इंडिया और केरला, और ये इंडिया में केरला जो है वहां पे बहुत ज्यादा मैसिव किस्म के अब निकाले जा रहे हैं, मोर्चे निकाले जा रहे हैं पैलेस्टाइन के हक में, और कहा जा रहा है कि जी पैलेस्टाइन के अंदर सीज फायर की बात की जाए, लेकिन जाहिर है कि कोई भी उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। OIC की भी एक मीटिंग हुई थी जिसके के अंदर जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने भी कहा था कि सीज फायर की तरफ जाने की जरूरत है इसराइल में ये जो वॉर चल रही है, लेकिन कोई उसके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया गया है। उसकी वजह यह है कि OIC के अंदर कोई भी यूनिटी नहीं देखी गई है, और जो UAE और बहरेन थे, हालांकि लेबनान और अल्जीरिया ने कहा था कि सीज फायर की तरफ जाएं, लेकिन UAE और बहरेन ने कहा कि हम इसके ऊपर अभी कोई जो है इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, यानी उन्होंने कहा था सैंक्शन भी आप लगाएं इसराइल पर, उनके साथ ट्रेड रोके, तो उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर नहीं। इसी बीच में नतन्याहू साहब ने बड़ा जो है वो सुनाया है अरब कंट्रीज को, उन्होंने कहा चुप करके, यानी एक तरह से धमकी दी, उन्होंने بیٹا چپ کر کے بیٹھے رہو، خبردار اس کانفلکٹ کے اندر انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو ہے آپ بالکل اس سے بیٹھو. اچھا جی، دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی اکراز، چڑیا کمپلائنٹ سروسز لے کر آتے ہیں، آپ کو پتا ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے راجہ بادشاہ جی کہتے ہیں دو آپ کے پاس گاڑیاں اور ایک گھر ہے اور 1775 آپ ڈالرز بچا سکتے ہیں اگر آپ کو انشورنس کرانی ہے. آل اسٹیٹ ایجیکس ایجنسی کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان کو سمپرک کر سکتے ہیں. اونٹیریو کا لارجسٹ پاکستانی حلال بفے ولیج ٹیسٹ، ان کو بھی آپ سمپرک کر سکتے ہیں. نیا انہوں نے اپنا ریسٹورینٹ کھولا ہے 2294 لیک شور روڈ ویسٹ اوکفل میں، ان کا نمبر ہے 905-226-2294. اس کے علاوہ نان کبوب 5042 سیٹلائٹ ڈرائیو پہ انہوں نے نیا اپنا ریسٹورینٹ کھولا ہے، وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور آرڈر بھی کر سکتے ہیں، ان کا نمبر ہے 4162858191.
چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال کی بات کرتے چلوں، 2935 ڈرو روڈ مساگا میں لوکیٹڈ ہے. 1200 سے 1400 لوگوں کی اگر آپ نے کوئی دعوت کرنی ہے تو سب چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال پہ ایک دفعہ تشریف لائیں. www.chandnivictoria.ca پہ جا کے ساری انفارمیشن مل سکتی ہے آپ کو. 6479653823 ان کا فون نمبر ہے. ڈینٹسٹری اور مسز ساگر ڈاکٹر نازیہ رحمان یہاں پر ہوتی ہیں، اور آپ یا آپ کے گھر میں کسی کے بھی دانتوں میں کوئی خرابی ہو، دو لوکیشن سے سرو کرتی ہیں، دونوں آپ کے برامپٹن کے علاقے میں ہیں. ڈاکٹر نازیہ رحمان 9058721100. گریل اینڈ چیک دو لوکیشن سے سرو کرتے ہیں آپ کو، مس ساگا میں 3525 پلاٹینم ڈرائیو اینڈ برامپٹن میں 15 مونٹ فیلیئر اسٹریٹ ان برامپٹن. www.grillandcheck.com پہ جائیے فور دا انفارمیشن کے لیے. 9054560500 ان کا فون نمبر ہے.
اچھا جی، ہم آپ کو سنا دیتے ہیں پہلے کچھ انٹرٹینمنٹ کی خبریں اور اس کے بعد ہم آپ کو پاکستان انڈیا اور لے کر جائیں گے ان کی طرف. یس، ان کی طرف ہم لے کر جائیں گے آپ کو سپورٹس کی طرف. نانا پاٹکر صاحب سے آج لوگ جو ہیں بڑے خفا ہوئے، کیونکہ نانا پاٹکر صاحب ایک فلم کی شوٹنگ کے اوپر موجود تھے اور وہاں پہ ایک لڑکے نے پیچھے سے آ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک سیلفی لینے کی کوشش کی، جس پہ انہوں نے ان کے سر کے اوپر بہت زور سے جانٹا مارا. اور یہ ساری چیز جو ہے اب سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہوئی ہے. یہ اپنی شوٹنگ کر رہے تھے اپنی نئی فلم جرنی کے لیے، جو کہ دشا ویدم گھٹ پہ وارانسی میں ہو رہا تھا. تو لوگوں نے کہا جی آپ جو سٹار بنے ہوئے ہیں وہ فینز کی وجہ سے ایسا مت کریں. ایشوریا رائے بچن نے آج جو رومرز تھے کہ جی وہ چونکہ اس کے جو تھی جو قسمت تھی اس کے اندر کھوٹ تھا، تو اس کی شادی پہلے ابھیشیک بچن سے کرنے سے پہلے ایک درخت سے شادی کی تھی، اسی کے اوپر آج یہ بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی آج بھی جب میں باہر ٹریول کرتی ہوں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہاری شادی پہلے درخت سے ہوئی تھی ابھیشیک بچن سے شادی ہونے سے پہلے، تو آئی ایم ریئلی بیفلڈ. اور یہ اتنا زیادہ یہ چیز جو ہے وہ انوائے کر رہی ہے بچن فیملی کو کہ جو ابھیشیک بچن اور امیتا بچن دونوں کو سامنے آ کے بولنا پڑا ہے کہ بھئی وہ درخت تو دکھاؤ جس کے ساتھ ہم نے ایشوریا کی شادی کی تھی. امیتا بچن نے تو کہا کہ بھئی میرے بیٹے کی شادی تو صرف ایک لڑکی ایشوریا سے ہوئی ہے، درخت وقت کا نہیں مطلب مجھے پتا، البتہ اگر آپ ابھیشیک کو درخت سمجھتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے.
اس کے ساتھ ہی بس ہم تھوڑی دیر کا بریک لیں گے آپ سے، اور آپ نے جو بقیہ نیوز سنی ہے وہ آپ سن سکیں گے 6478724900 پہ جا کے آپ ہماری خبریں سن سکتے ہیں. www.eawaz.com پہ بھی جائیں آپ تو وہاں پر آپ نے لسن لائیو یا واچ لائیو پہ جا کے ہمیں سن سکتے ہیں، ہمیں دیکھ سکتے ہیں. کچھ چھوٹی سی بریک، ول بی رائٹ بیک.
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world, in words and in music.
जी सर, वेलकम बैक अगेन। एंड चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम बाकिया की न्यूज की जानेब। शाजिया मलिक जी। जी
हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बीबी जरदारी जो हैं वो तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। आपको पता ही है कि पीएमएलएन और पीपीपी के बीच में अब ठन गई है, क्योंकि अब इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया है, 8 फरवरी को होने वाले हैं। आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्वेटा में पहुंचे हुए थे और वहां पर वो उससे पहले सिंध में थे, तो वो डिफरेंट पार्टीज के साथ मिल रहे हैं ताकि पोलिटिकल अलायंसेज बनाई जा सके, जिसके ऊपर बीबी जरदारी ने बड़ा सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को मैं कहता हूं कि जरा लाहौर पे आप कॉन्सेंट्रेट कर लें बजाय इसके कि आप दूसरे प्रोविंसेस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आज उसी का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ साहब जो है वो बात कर रहे थे, एक प्रेसर से बात कर रहे थे क्वेटा में। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, वो हमें कुछ कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, हमने इकट्ठे 16 मंथ्स जो है पीटीएम की गवर्नमेंट में काम किया है। तो हम उन्होंने जो बात की, उनसे पूछा गया था कि ये जो इन्होंने बीबी जरदारी ने जो प्रेसर किया था मिठाई के अंदर, उसके अंदर उन्होंने आपको बड़ा हिट किया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम उनकी बात का माइंड नहीं करते, वो हमारे भाई हैं। जुल्फी बुखारी साहब जो कि रह रहे हैं लंदन में, आपको पता ही है, और बड़े क्लोज फ्रेंड थे इमरान खान साहब के, आज वो बात कर रहे थे एसओएएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक सेमिनार पे, जिसका के टाइटल था डेमोक्रेसी इन क्राइसिस ऑर्गेनाइज्ड बाय एसओएएस पाकिस्तान डिस्कशन फोरम ने यहां पे यूनिवर्सिटी में। तो उसके ऊपर उनसे पूछा गया कि उस्मान बुज़दार को क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनाना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट सूबा और उसका ऐसा चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा जी असल में अलीम खान ग्रुप और दूसरे बहुत सारे ग्रुप जो थे उनके अंदर बेतहाशा लड़ाइयां शुरू हो गई थी और हमको कोई भी ऐसा न्यूट्रल आदमी नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से हमने उस्मान बुज़दार को लगाया। इमरान खान समझते थे कि यह ठीक अपॉइंटमेंट नहीं है और वो इसको हटाना चाहते थे, लेकिन वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द इन फाइटिंग। हर कोई अपना बंदा वहां पर चाहता था और चूंकि ये बिल्कुल ही बेजरर सा था तो इसके ऊपर किसी को एतराज नहीं था, बट इमरान खान ऑफकोर्स रियलाइजेज दैट इट वॉज अ मिस्टेक। ऑन द क्वेश्चन ऑफ फराग गोगी जो कि बुशरा बीबी की फ्रेंड है, जो कि इमरान खान साहब की वाइफ है बुशरा बीबी, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि उनके ऊपर अगर कोई अलेज करप्शन के केसेस हैं तो उनको बिल्कुल अंडर द लॉ ट्राई करना चाहिए, लेकिन इसका पता जो है इमरान खान साहब को नहीं था, उसको उन्होंने कभी डिफेंड नहीं किया मीडिया के अंदर। उन तक अगर ये बात पहुंचती तो वो जरूर एक्शन लेते, और उन्होंने कहा जी कि उनको ना तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं थे, लेकिन जो लॉ के अंडर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए वो किया जा सकता है और उनको सजा दी जा सकती है। अलबत्ता इमरान खान साहब को उनकी शेडी बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। आज सेनेट के अंदर जी काफी सारे लोग जो हैं उन्होंने शोर मचाया, क्योंकि वो जो केस एक आया था कि जी जो सिविलियंस हैं उनको अंडर पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में आफ्टर मे 9 का जो वाकया हुआ था उसमें उनको ट्राई किया जा सकता है। तो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के जितने भी लोग थे आज सेनेट में, उन्होंने कहा कि ये जो कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन पास की गई है हाउस में बड़े हेस्ट में और इससे में जब लोग भी कम थे तब, तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसको इमीडिएटली विदड्रॉ किया जाए। डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अफरीदी जो हैं उन्होंने प्रोसीडिंग्स फटाफट खत्म कर दी थी और ये एजेंडा जब सामने आया था तो इसको फौरन पास किया था। सादिया बसी जो पीएमएलएन की है सेनेटर, उन्होंने कहा जी कि इसकी क्या जल्दी थी, इसको क्यों इतनी जल्दी पास किया गया जबकि सिर्फ 12 के करीब सेनेटर्स थे, पूरा फुल कोरम भी नहीं था। ये 2-पेज रेजोल्यूशन जो लाई गई थी इसको लाए थे इंडिपेंडेंट सेनेटर दिलावर खान और इसको सपोर्ट किया था बाप के सेनेटर्स ने, यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, और इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 23 का जो वर्डिक्ट है उसने री राइट लॉ को करने की कोशिश की है और जो अथॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविलियंस के केसेस सुप्रीम उसमें सिविलियन कोर्ट्स में और मिलिट्री वालों के केसेस मिलिट्री में होने चाहिए, लेकिन इन दो ने उसको इंडोर्स किया था जबकि बाकी सेनेट ने इसको निखारा है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस वक्त यह रेजोल्यूशन सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी जब लेकर आए भी थे उस वक्त भी सेनेटर्स जो हैं पीपीपी के रजा रब्बानी और जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि इसको फौरन वापस लें, लेकिन संजरानी साहब ने इसको इग्नोर किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायजीजा साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया गया है जिसको कि ये दी गई है जॉब के 2017 का जो सिट इन किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैजाबाद में, जिसमें कि लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। तो इस कमीशन के पास सारी पावर्स हैं कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर आर्मी चीफ और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी बुला सकते हैं। यह मामला जो है जिसको कि हेड कर रहे हैं जस्टिस ईसा और इस जो बेंच है इसके अंदर हैं जस्टिस अथर मेनल्ला और अमीन
امین الخان, انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس وقت یہ سارا کچھ سننے کے بعد ججمنٹ دیا تھا کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی, اس میں ہیٹ سپیچز اور ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو ہے اس کو بہت ہوا دی گئی تھی, اور ڈیفنس منسٹری اور ٹرائل سروسز چیف اور جو باقی لوگ تھے ان کو میں نے حکم دیا تھا کہ جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں, لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے بہت ساری ویسے تو پٹیشنز دائر کی گئی تھیں بائی منسٹری آف ڈیفینس, آئی بی, پی ٹی آئی, پیمرا, ای سی بی, ایم کیو ایم, شیخ رشید, اعجاز الحق, لیکن وہ پھر سارے کے ساری جو ہیں وہ واپس لے لی گئی تھیں پلیز. تو چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر پوچھا بھی تھا کہ بھئی لوگ سچ بولنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں. اس موقع پہ پیمرا کے جو فارمر چیف ہیں ابصار عالم صاحب وہ سامنے آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ساری گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ انٹرفیئرنس کرتی تھیں, کس طرح جو جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ڈکٹیٹ ٹرمز کرتے تھے, اور میڈیا جو ہے اس کو کوئرشن کے لیے یوز کیا جاتا تھا. تو اسی لیے سی جے پی نے کہا تھا کہ باقی لوگ بھی سامنے آئیں اور سچ بولیں, لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا تھا. ہندوستان کے اندر جی آج ایک بڑی زبردست سٹوری آئی ہے دا پرنٹ کی, اینڈ دس از ریٹن بائی پروین سوامی, اور یہ بڑی ایک سکیدنگ رپورٹ ہے, اور انہوں نے کہا ہے ایک ان کی جو ہیڈ لائن ہے ان کی سٹوری کی, وہ کہتے ہیں جی رابندر سنگھ اسپائی اسکینڈل ایکسپوز روز اگلی سائڈ بٹ انڈیا ہیزنٹ لرنڈ فرام اٹس مسٹیکس. یہ بڑی لمبی سٹوری ہے اور کوئی 4000 ورڈ سے بھی زیادہ کی, اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے جی کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی فلم آئی ہے وشال بھردواج کی خفیہ, جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ رو نے 2003 میں کس طرح جو ہے کہاں کہاں پہ جا کے وہ انٹرفیئر کرتے تھے, اور یہ بیسڈ ہے ویسے لوزلی وہ کہتے ہیں امر بھوشن کی فکشنل 2012 کی بک اسکیپ ٹو نو ویئر, جس میں کہ کہا گیا تھا کہ یہ جو رابندر سنگھ تھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یو اوز کیوں نہیں چینج ایکسچینج کر سکتے ہیں, یو اوز ہوتے ہیں ان آفیشیل نوٹس جو کہ انٹیلیجنس ورلڈ ایک دوسرے کے ساتھ یوز کرتی ہے, جس میں کہ سجھاؤ ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں, آبزرویشن, اور کچھ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے. تو اس سٹوری میں کہا گیا جی کہ سنگھ صاحب کا یہ بزنس نہیں تھا, ان کا جو کام تھا انٹیلیجنس گیدر کر کے گورنمنٹ کو دینے کا وہ کرنا تھا, اور یہ ساری چیزیں بڑے گلیئرنگلی صاحب نے آئی جب نجر صاحب کے کیس میں ٹروڈو صاحب نے الیگیشنز لگائے کہ ہندوستان نے جو ہے وہ انٹرفیئر کیا ہے ان کے انٹرنل معاملات میں. اس کے علاوہ ایک گروئنگ جو آواز اٹھ رہی ہے انڈیا کے اندر کہ بڑے اوفینسو قسم کے جو سرویلنس ٹولز پیگاسس اور پریڈیٹر جو ہیں یوز کیے جا رہے ہیں, جتنے بھی ڈومیسٹک ڈائسنٹس ہیں اور فارن ڈپلومیٹس ہیں اور ایون ٹیررسٹ جو ہیں ان کے خلاف یوز کرنے کے لیے, تو یہ لوگوں کی پرائیویسی کی بریچ ہے. لیکن جو ہے ابھی تک انڈیا کا سائبر نیٹورک جو ہے ویکنسز جو مین ہوتی ہیں ان کو تو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا ہے, اس طرح کے بوچڈ آپریشنز کرتا رہتا ہے جیسے کہ اس نے کیا تھا فیوجیٹو بزنس مین میہل چوکسی کے سلسلے میں بھی اینٹیگوا میں, اور بھی بہت سارے اس کے جو نیشنلز ہیں وہ انوالو ہیں ڈفرنٹ جگہ پہ. وہ کہتے ہیں جی اور بھی چیزیں کھل کے سامنے آئیں جب کلبھوشن یادو پاکستان میں پکڑا گیا, اور اب 8 فارمر انڈین نیول آفیشلز جو ہیں وہ قطر میں انڈیا کے لیے اسپائنگ کرتے ہوئے الیجلی پکڑے گئے, اور ان کو جو ہے ڈیتھ سینٹنس اب سنائی دی گئی. وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے اس کے ایمبیشنز تو بڑے ہائے ہیں, لیکن اس کو میچ کرنا چاہیے ٹریڈ کرافٹ سے بھی, اور اگر یہ انڈیا جو ہے اپنی مسٹیک سے لرن نہیں کرے گا تو اس طرح کے کیسز اور آئیں گے اور ہندوستان کی بدنامی ہوئے گی. دا پرنٹ کی آج ایک دوسری سٹوری ہے جی, اور اس کے مطابق جو مودی جی بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ اکنامک ریلم میں کام کیا ہے, اور یہ بڑی بڑی باتیں جو آج کل خاص طور پہ کی جا رہی ہیں کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں نیکسٹ ایئر میں, وہ کہتے ہیں جی کہ اب جیسے جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اکنامیکلی بڑے اسٹرانگ ہو رہے ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پکچر اتنی روزی نہیں ہے, اتنا بھی سب کچھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ سب چنگا سی مودی جی تو سب چنگا نہیں سی. وہ کہتے ہیں جی کہ ویسے تو مودی جی نے کہا تھا کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو بزنس, لیکن پھر بھی جو مودی جی کے جب جو گورنمنٹ ہے وہ جو ابھی فوڈ پرائسز جو ہیں ان کو ان کے بزنس میں فوڈ کے بزنس میں انٹر ہو گئی ہے, تو یہ شو کرتی ہے کہ فوڈ کا کرائسس ملک کے اندر ہے اور پور جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو ایل پی جی پہ جو سبسڈی دی جاتی تھی اس کو مہینے میں 2 دفعہ اوپر کر دیا گیا ہے. ایمرجنسی ایلوکیشنز جو تھے 10,000 کروڑ کے فار مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم, اس کے اوپر بھی جو ہے یہ بجٹ اس کو ہائی کیا گیا ہے, جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ رورل اکانومی کے اندر بہت زیادہ ویکنسز ہیں. تو یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں कि गवर्नमेंट वैसे तो जो 1% पॉपुलेशन विच इज डूइंग वेरी 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 वेल एंड विच इज एक्सट्रीमली वेल्दी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, गरीब के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। मई के महीने में वो कहते हैं जी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो थे वी अनंथा नगेशवरन, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी ऑटो पायलट पे हिंदुस्तान की चल रही है और गवर्नमेंट जो है उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही और उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रही है। और बिहार में अभी जो रिसेंटली कैस्ट इशू जो सामने आया था उसने तो ये बात जो है मोदी जी के भी होंठों पे लाई कि जो पुअर है वो बिगेस्ट कैस्ट इन द कंट्री है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन गरीब के ऊपर पुअर के ऊपर क्यों नहीं है? अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए तो आप कहते जाएंगे कि इकोनॉमी ने अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन असल में यह बात है कि गरीब का इस मुल्क में बहुत ही बुरा हाल है। तो जनाब आज ये भी प्रिंट की, आज ये बैक टू बैक दो स्टोरीज जबरदस्त थी। और जनाब बाबर आजम साहब हैं बेचारे बिल्कुल 29 ईयर्स के यंग कैप्टन थे हमारे, लेकिन आज इन्होंने पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ के सामने जाके रिजाइन किया और इन्होंने कहा जी कि मैं दिस इज द राइट टाइम और मैं अब हट रहा हूं अपनी तीनों जो फॉर्मेट्स हैं गेम के उससे, कैप्टनशिप से हट रहा हूं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था पहले टीम की परफॉर्मेंस जो एशिया कप में थी और अब वर्ल्ड कप में थी। और वो कहते हैं जी लेकिन आई एम देयर, आई विल प्ले इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स और मैं हर किसी को सपोर्ट करूंगा। आपको पता ही है कि बाबर आजम का बड़ा ही इलस्ट्रेशियस जो है वो करियर है और 2 साल तक तकरीबन ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में टॉप के प्लेयर रहे हैं एंड ही इज द ओनली बैट्समैन जो कि ऑल थ्री फॉर्मेट्स जो होते हैं T20 ओडीआई टेस्ट में टॉप बैट्समैन रहे हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कैप्टनसी शायद नहीं कर सके। आज क्रिकेटर्स ने बाबर आजम को बहुत ज्यादा जो है वो दी मुबारकबाद दी उनकी अच्छी सर्विसेज के बारे में, उनके रिजिग्नेशन के लिए नहीं पर उन्होंने कहा कि वाओ व्हाट अ कैप्टन ही वाज। मोहम्मद रिजवान ने एक्स के ऊपर कहा कि कैप्टन यू रूल आवर हार्ट्स। अजहर अली सोहेल तनवीर ने कहा, उन्होंने कहा कि आपकी जो आपने एफर्ट्स की कैप्टनसी के लिए और पाकिस्तान को नंबर 1 ओडीआई टीम बनाया उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। मोहम्मद हफीज ने भी कहा कि थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स एज अ कैप्टन एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस इन फ्यूचर। और जो बॉलर थे सईद अजमल, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारे जैसा हमारे पास कम कैप्टन्स आए हैं जिन्होंने के पाकिस्तान की ओडीआई टीम को नंबर 1 स्पॉट पे डाला। पीसीबी ने आज जनाब अनाउंस किए हैं कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स। शान मसूद 34 इयर्स ओल्ड यंगस्टर, इनको पाकिस्तान टेस्ट का कैप्टन बनाया है। एंड शाहिद शाह अफरीदी अगेन इवन यंगर 23 इयर्स ओल्ड, इनको T20 का कैप्टन बनाया है। शाहीन जो है कैप्टन करेंगे, सॉरी शान जो है वो कैप्टन करेंगे टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 तक। उनकी फर्स्ट असाइनमेंट रहेगी 3-मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया जो कि शुरू हो रही है December 14 से। और शाहीन शाह अफरीदी की फर्स्ट असाइनमेंट रहेगी 5-मैच T20 सीरीज इन न्यूजीलैंड जो कि स्टार्ट हो रही है January 12 to 21 तक। और ये जो हैं आपको पता ही है शाहीन शाह कैप्टन करते हैं लाहौर कलंदर्स को भी पीएसएल में और 2 दफा इन्होंने जिताया अपनी टीम को 2022-23 एडिशंस में। और इसके साथ साथ जो एक और अपॉइंटमेंट आज की है पीसीबी ने वो मोहम्मद हफीज साहब की है, उनको बनाया है अब जी डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेन्स क्रिकेट टीम, क्योंकि आपको पता ही है मिकी आर्थर ने छोड़ दिया है या उनको निकाल दिया गया है। आज जनाब इंडिया ने एक धांसू किस्म का एक और मैच खेलते हुए न्यूजीलैंड को वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मुंबई में हराया और ये इनकी 10th स्ट्रेट विक्ट्री थी इन वर्ल्ड कप। और अब ये फाइनल खेलेंगे जीतने वाली टीम के साथ November 19 को। इन्होंने 398 रन बनाए और कीवीज को इन्होंने बॉल आउट किया 327 रन इन 49 ओवर्स। मोहम्मद शमी जो हैं उसने 7 विकेट्स लिए और विराट कोहली ने आज 117 रन बनाए ऑफ 113 बॉल्स। शरियास अय्यर ने 105 रन बनाए, रोहित शर्मा जो कैप्टन है 47 ऑफ 49 बॉल्स। इसके अलावा जो कीवीज ने अच्छा खेला उसमें केन विलियमसन और डेरेक मिशेल ने एक फॉर्म की थी 184 की पार्टनरशिप जो कि बड़ी स्ट्रांग जा रही थी, क्योंकि इसमें डैरल मिशेल जो थे उन्होंने 134 रन बनाए थे इन 119 बॉल्स। अनफॉर्चुनेटली इसको इन्होंने ब्रेक किया इंडिया ने इस पार्टनरशिप को और एज अ रिजल्ट इंडिया जो है आज फिर से जीती है। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट विराट कोहली। वाओ व्हाट अ प्लेयर ही इज। इन्होंने आज अपनी 50th ओडीआई 100 स्कोर किया है और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। और यही जो अभी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड हो रहा था वंखड़े स्टेडियम मुंबई में, वहीं पे और कोहली जो थी उन्होंने अपनी अभी थोड़े दिन पहले जो 35th बर्थडे सेलिब्रेट की थी उसमें उन्होंने 49th 100 बनाया था और तेंदुलकर का जो था रिकॉर्ड उसको लेवल किया था. आज इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है. ये जो मैच था ये इन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अर्लियर दिस मंथ. इन्होंने जो है अपने 279th मैच में अपनी 49th 100 बनाई थी जबकि तेंदुलकर ने 452nd इनिंग्स में मैच में बनाई थी. इसके अलावा रोहित शर्मा जो है अब थर्ड है इन ओडीआई 100 लिस्ट मेकर्स में और इन्होंने जो है वो 31 बनाए हैं हंड्रेड्स फ्रॉम 253 इनिंग्स. तो वाओ व्हाट अ इनिंग्स बाय कोहली अगेन टुडे एंड क्या जबरदस्त प्लेयर है जी और रिकॉर्ड के पे रिकॉर्ड तोड़े हैं. लेकिन ये भी वही हुआ है कि जब कैप्टन थे तो इतना अच्छा नहीं कर सके, कैप्टनसी से इनको हटाया गया तो ही इज रियली शाइनिंग एज अ प्लेयर. लेकिन क्या बात है जी इंडिया टीम की, जैसे वो खेले हैं और वर्ल्ड कप के अंदर 10 मैच होने और 10 के 10 जीतने, अमेजिंग फीट, अमेजिंग फीट. ऑल द यू नो जो है वो फेलिसिटेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सारी प्रेज जो है इंडिया टीम के लिए. अमेजिंग अमेजिंग.
नेक्स्ट मैच.
तो ये दीजिए हमारी सारी आज की खबरें. ठीक है जी.
आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी जो है इज गोइंग टू बी अ गुड कैप्टन.
यस यस, क्योंकि वो कलंदर्स को खिलाता है बड़ा जबरदस्त. तो अगर उसके अंदर इतनी स्ट्रेटजी, सूझबूझ, विजन है कि वो कलंदर्स को खिला सकता है तो फिर मुझे लगता है कि टीम को भी स्टीयर कर सकता है.
हाँ, मैं हमारे आजम के खिलाफ कभी भी नहीं बात
करूंगा. नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं.
एक्सीलेंट प्लेयर,
अमेजिंग प्लेयर,
अमेजिंग प्लेयर. बैड लक होगी उसके साथ.
हाँ, जैसे कि कोहली के साथ हुई थी. अब आप देखें ना कितना अमेजिंग प्लेयर है लेकिन कैप्टनसी उसकी नहीं चल रही थी ना कोहली की.
हाँ, तो वो ऐसा हो गया उससे. मगर ये कि इस भाई अपने टीम की परफॉर्मेंस देखें उसकी जब एज व्हेन ही वाज कैप्टन.
जी जी जी, नंबर वन ओडीआई टीम थी पाकिस्तान.
एग्जैक्टली.
या तो वही लेकर गया ना, वही तो कल उसने कहा कपिल देव ने कि उसकी वजह से तो आप लोग नंबर वन ओडीआई टीम बने हैं.
एग्जैक्टली.